आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
प्रस्तुत है 15 जून 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ईरान ने पुष्टि की है कि अमेरिका और इसराइल के साथ विभिन्न मोर्चों पर जारी संघर्ष को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया आज रात से शुरू हो जाएगी। ईरान ने उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि आने वाले 60 दिनों के दौरान दोनों पक्षों के बीच वार्ताएं जारी रहेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि यदि समझौते का उल्लंघन हुआ तो तेहरान जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखेगा। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इस समझौते की पुष्टि करते हुए सभी पक्षों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बिना किसी शुल्क के समुद्री यातायात के लिए खोलने तथा अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी को तत्काल हटाने की अनुमति दे दी गई है। अमेरिका और ईरान के बीच औपचारिक शांति समझौते पर इस शुक्रवार स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि ये समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम होने के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को भी राहत मिल सकती है। वहीं इस शांति समझौते का स्वागत करते हुए यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी और इटली ने कहा है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सत्यापित कदम उठाने की स्थिति में वे संबंधित प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हैं। साथ ही कतर और जापान समेत कई देशों ने भी इस समझौते का स्वागत किया है, जबकि कतर ने समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभाने के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया। वहीं बात करें सिडनी की, तो सिडनी के कूजी बीच पर हुए शार्क हमले के बाद एक बार फिर शार्क नियंत्रण उपायों और शार्क किलिंग को लेकर बहस तेज हो गई है। शनिवार सुबह समुद्र तट पर तैर रही लगभग 30 वर्षीय एक महिला पर शार्क ने हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पूर्वी सिडनी के कई समुद्र तटों को बंद कर दिया गया है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ विस्तृत बातचीत की है। ये बातचीत फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन से पहले हुई है, जहां यूक्रेन में जारी युद्ध प्रमुख मुद्दों में शामिल है। वहीं स्विट्जरलैंड में जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस मुख्यालय के बाहर हजारों प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं। शुरुआत में शांतिपूर्ण रहे प्रदर्शन के दौरान कुछ स्थानों पर हिंसा और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वाटर कैनन और टियर गैस का इस्तेमाल किया। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी NDIS में प्रस्तावित बदलावों को लेकर उठ रही चिंताओं को स्वीकार किया है। सीनेट जांच समिति को 2 हफ्ते के भीतर 4,000 से अधिक सार्वजनिक सुझाव प्राप्त हुए हैं। वहीं आलोचकों का कहना है कि लागत कम करने के उपायों से आने वाले वर्षों में बड़ी संख्या में लोग योजना से बाहर हो सकते हैं। हालांकि सरकार का इस पर कहना है कि वे NDIS के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर कायम हैं। गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने कहा है कि सरकार प्रवासन संख्या कम करना चाहती है, लेकिन साथ ही देश में कौशल यानी स्किल की कमी को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। सरकार आने वाले वर्षों में फॉरेन इमिग्रेशन को प्रतिवर्ष 2,25,000 तक सीमित करने का लक्ष्य रख रही है। बात करें भारत की, तो धर्मशाला में खेले गए वर्षा प्रभावित एक दिवसीय मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया था। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने लक्ष्य 13 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। इस मैच में कप्तान शुभमन गिल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 11 चौकों और 2 छक्कों की मदद से टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।